चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशि भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्यतम शिष्य नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिष्यमद भक्ति प्रज्ञान के शुभ स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में माताएं और कन्याएं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं हरिनगर में आऊं किंतु नहीं आ सका। बीच बीच में मैं विदेशों में गया, वहां से आने के समय जाते समय हरिनगर वाले भक्तों ने बहुत आग्रह किया, तो मैंने वादा किया मैं जरूर आऊंगा किंतु वादा नहीं पूरा कर सका। इस बार मैंने कहा कि हमें जाना ही है, जन्माष्टमी करके राधाष्टमी से पहले ही हम जाएंगे और दो चार दिन रहेंगे। पहले मानस नगर में, मानस क्या नाम, मानसरोवर गार्डन में दो तीन दिनों तक रहूंगा और वहां पर हरि कथा होगी और तत्पश्चात हरिनगर में आऊंगा। किंतु वहां पर हमारे कश्यप जी की तबीयत खराब हो गई, उनके घर वालों की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन लोग यहीं से आरंभ किया। मानव जीवन का लक्ष्य कोई कुछ जाने न जाने, सुख और शांति सभी चाहते, सभी लोग सुख शांति, ऐसा जगत का कोई भी प्राणी नहीं जो सुख और शांति नहीं चाहते। जब से सृष्टि हुई है तभी से इसके लिए चेष्टा चल रही है और भी चलती रहेगी। इसमें कोई कोई सौभाग्यवान जीव शांति और सुख पाकर जीवन को कृतार्थ कर इस संसार से सदा के लिए चला जाएगा और बाकी लोग जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे, यथार्थ तो साधु संतों की बात नहीं सुनेंगे, वे लाख चेष्टा करने पर भी न तो उन्हें शांति आएगी न सुखी हो सकते। आप लोग तो देख ही रहे हैं विज्ञान की कितनी उन्नति हुई, कंप्यूटर की कितनी उन्नति हुई, मेडिकल साइंस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सभी कुछ की बड़ी उन्नति हुई, किंतु मैं समझता हूं कि आज से 50 वर्ष पहले लोग जो सुखी थे आज नहीं है। लोगों में छल छंद, लोगों में दुष्टता, व्यभिचार, बेईमानी क्रमशः बढ़ रही है। जिस समय त्रेता युग से द्वापर युग आया और फिर द्वापर से कलयुग आया, ये दिन द्वापर से कलयुग आया, एक दिन पहले दो परिवारों में कुछ लड़ाई हो गई। लड़ाई इसलिए ठन गई कि एक परिवार के लड़के के साथ दूसरे परिवार की लड़की के साथ में शादी हुई। शादी होने के बाद में लड़की पक्ष ने कुछ जमीन वर पक्ष को दिया दान में, दहेज में। तो उसने उस दिन तो ले लिया और उसी दिन उसने हल चलाया, उसमें एक हड़िया भरी सोने की या सरखी की हड़िया मिली। वो सोने की या सरखी से भरी हुई हड़िया को लेकर अपने बेटे की जहां ससुराल थी, इन्होंने दहेज दिया था, उनके पास में गया और बोला, हमको तो तुमने जमीन दान दी कि इसमें असरफी भरी हुई बड़ी हड़िया मिली, इस पर हमारा अधिकार नहीं, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा, जमीन। उसने कहा जी मैं जमीन का पूरा स्वत्व, इसमें जो कुछ भी होने वाला मिलने वाला जो कुछ है मैंने सब कुछ निस्वत्व दान किया। कहते नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, जय जमीन वो नहीं हुआ। दोनों में बहुत कुछ हुआ किंतु नहीं लिया उसने, और उसने भी देना नहीं छोड़ा। किसी न्याय वाले के पास में गए, जज के पास में गए, उन्होंने फरियाद की, उन्होंने दोनों का पक्ष सुना, कहा जैसे अब आज मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं कल कुछ निर्णय लूंगा, सोच विचार जैसा उचित होगा। और दूसरे दिन कल युग आ गया और वो जब निर्णय करने बैठा, अब दोनों एप्लीकेशन लेकर के पहुंचे। पहला कहता है कि ये हड़िया मेरी है जिसके खेत में निकला, मैंने तो खेत दान किया था, हड़िया नहीं सोने वाली है सरफी। और दूसरा कहता है जो कुछ जमीन जब दे दिया तो वो हड़िया भी मेरी है, मेरी है सरफी है। एक दिन में बदल गया, कैसा स्वार्थ, यही कलयुग है। किसी को चैन से नहीं बैठने देगा, लोगों के अंदर में बेईमानी आ जाती है, आत्मज्ञान भूल जाता है, सोने अर्थ में उनकी बुद्धि लग जाती है। इसी से मैं सुखी हूंगा किंतु आज तक कोई नहीं हुआ, सतयुग से लेकर के अब तक, और फिर भी हम इस चीज का पीछा नहीं छोड़ रहे। भगवान का भजन करने से सुखी होंगे, शास्त्र पुकार पुकार करके कह रहे हैं, नहीं सुखी हो सकते, तभी हम लोग इसके पीछे दौड़ते हैं। यहां तक कि गृहस्थों की तो बात करें, त्यागी लोग भी, नारद जी का देखो, विश्वामित्र जी को देखो और लोगों को देखो, त्यागी लोग भी आजकल भी देखो, लाखों में से कोई एक व्यक्ति साधु और बाकी सब ऐसे उसी के पीछे पड़े हुए हैं जिसके लिए गृहस्थ, कोई सुखी नहीं, कौन सुखी रह सकता है जो इस जगत के श्रष्टा है, स्थिति करने वाले प्रभु हैं, बड़े करुणामय हैं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं। यदि कोई उनका शरणागत हो जाए, अनकंडीशनल सरेंडर सचमुच में कर दे, जैसे द्रौपदी जी लज्जा रखने के लिए भगवान को पुकार रही हैं और भगवान नहीं आ रहे, आंचल को अपने दांतों सले अभी दबा रखा है, और जगह से तो हार गई, किसी ने भीष्म पितामह द्रोण कर्ण इत्यादि पांचों पांडव लोग, कोई नहीं सहायता कर सकता, और अपने बल से अपनी नहीं सहायता कर सकता, जब दोनों हाथों को उठा दिया, हे गोविंद राकुशर, जब ऐसा कहा एक क्षण भी नहीं लगा, प्रभु ने उनकी रक्षा। इतने शास्त्रों में उदाहरण है तो भी हम लोग ऐसा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, और इसीलिए सुखी नहीं हो पाते। विशेष करके कलयुग में तो ये बतलाया जी, अच्छा अच्छा कुछ मत करो, इतना भी ना हो, बल्कि उठते बैठते जागते सोते छींकते हुए भी फिसलते हुए भी जैसे तैसे भगवान नाम करो। और यदि यह नाम समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हो तो बात ही क्या। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल निगमवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत विपरीतम श्रद्धया हे दयावा भृगुवर नरमात्रम तारी। जिस प्रकार भगवान का नाम मधुर से भी मधुर, अमृत से भी अधिक मधुर, और समस्त चिन्मय पदार्थों का भी वो चिन्मय है, वांछा कल्पतरु है, जो कुछ भी कहेंगे वो कर देगा यदि वैसा नाम लिया जाए। यहां तक कि गोलोक वृंदावन का प्रेम भी दिला देगा, संसार में धन संपत्ति की तो बात ही क्या, जरूर दिला देगा। यदि इस नाम को कोई श्रद्धा पूर्वक करे तो बात ही क्या, बिना श्रद्धा भी यदि करे तो संसार से उसका उद्धार कर देगा। यदि आग में हम हाथ जानबूझकर कर देते हैं तो भी जलाएगी, और यदि न समझे एक बच्चा अनबूझ अज्ञानी और नहीं जान करके हाथ उधर में पड़ गया गलती से भी तो वो जलाएगी आग। पानी में आप जाएंगे इच्छा नहीं करने पर भी आपको भी जाएगा, तो भगवान नाम उसे भी तो सामर्थ्यशाली, वो तो जरूर अपना कर देंगे। तब थोड़ा सा ये है, यदि सांसारिक आसक्ति रही, कोई सांसारिक कामना हुई तो उसके फल में विलंब हो सकता है, और सांसारिक फलों को देकर के वो इसलिए घर में रहें, जहां भी रहें, जिस रूप में रहें, त्यागी हो, सुख और शांति के लिए भगवान नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम भी दो प्रकार का, एक नाम कहीं से सुन लिया, माइक से सुन लिया, या ग्रंथों में लिखा है वहां से सुन लिया, वो उतना फलदायक नहीं होगा, वो उतना फल नहीं देगा, प्रेम नहीं देगा, सांसारिक चीजों को भी बहुत मुश्किल से देगा। जो नाम पुष्ट है, किसी ने साधन कर उसकी उपलब्धि कर, और तब जब वो लिया जाता है नाम, तब उस नाम की शक्ति सामर्थ्य उसमें होती है और वो संसार से उद्धार कर देता है। जैसे नारद जी ने वाल्मीकि को नाम दिया, वो राम राम नहीं कर सका, अच्छा उल्टा ही करो, उनका उल्टा हुआ किया हुआ नाम जगत में उनको सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बना दिया, नाम का फल उनको मिल गया। और हम लोग सीधा भी करते हैं तो नहीं, इसलिए जिन्होंने साधन भजन किया है और साधन भजन करके नाम की महिमा को उपलब्धि की है, और वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज को नाम दिया, देखो वो कैसे हो गए, वो उस गुरु परंपरा में आए, यदि गुरु सिद्ध होगा तो हो जाएगा, अन्यथा लाख चेष्टा करो नहीं। इसलिए गुरु दो प्रकार के हैं, एक भागवत परंपरा और एक शिष्य परंपरा या गुरु परंपरा। भागवत परंपरा सिद्धों की है और गुरु परंपरा शिष्य परंपरा, उद्देश्य तो दोनों का एक है, किंतु हो सकता है कि गुरु सिद्ध गुरु का शिष्य हो किंतु अपने गुरु का अनुसरण नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, साधन भजन नहीं किया, उसको सिद्धि नहीं हुई और संसारिकता में वो रह गया, अब उसका शिष्य होगा तो वो कैसा होगा, नहीं सिद्धि होगी। इसलिए ऐसा गुरु चाहिए। बिना गुरु के बिन गुरु भवन धी तरेन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो तभी नहीं होगा, साधारण लोगों की तो बात करें। इसलिए शास्त्रों में ये सब चीजें कही गई, विशेष करके साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कर लो मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। साधु संग, बिना साधु संग के ये कभी भी भजन नहीं हो सकता। भजन का मूल ही है साधु संग। साधु माने क्या? परीक्षित महाराज जी के दरबार में, उनकी सभा में जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उनके दीक्षित शिष्य कितने उसमें थे, आदमी उसमें कितने थे? 88,000 तो केवल सन्यासी साधु थे, और लोग तो अधिक थे, किंतु उसमें सुखदेव गोस्वामी जी का दीक्षित शिष्य कौन था? था कोई? कोई भी नहीं था। तो उनका कल्याण की हुआ कि नहीं? सबका कल्याण, क्योंकि साधु संत ऐसा सबल निवर्तर्षयी उपगीयमान बहु सदा सोत्र मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवादात विरज्जेत बिना पशुगुना। जिनको कोई कामना वासना नहीं है, कोई भी संसारी कामना वासना, और प्रेमा भक्ति उनके हृदय में है, निवर्तर्षयी उपगीयमाना, उपगीयमाना अपने गुरु से उन्होंने श्रवण की हो, गुरु की सेवा की हो, और पुनः उनके मुख से ये निकल रहे हैं सिद्ध नाम सिद्ध हरि कथा, तो वो संसारी लोगों के लिए महाऔषधि है, भौरों की औषधि है, समस्त क्लेशों को दूर करने वाली वो हरि कथा है। यदि उसको कोई नहीं सुनता तो उसके समान आत्मघाती और कोई नहीं है। वहां पर परीक्षा, आप लोग सुनिए, छोड़ कोई समस्या क्या है? हमको वही अच्छा है जो यहां पर होने से हमको प्रबल हो, आप लोग चुप जाते। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी क्या ये ऐलान करेंगे कि हमारे अतिरिक्त और कोई किसी के पास में सुनने मत जाना? कहेंगे वो? कभी कहा किसी ने? चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जी हमारे पास में अब तुम सुन ले, आप किसी के पास में मत जाना, किसी भी हमारे आचार्य ने? ऐसा मत सोचो, जहां भी साधु सुन रहे हमारे जी गोस्वामी इत्यादि के पास में श्यामानंद, नरोत्तम ठाकुर, शिवास आदि कितने आए। राय रामानंद ने लाखों लोगों को उपदेश दिया अपने दीक्षित क्षेत्र को ही, महाप्रभु ने जिनको जिनको भेजा वो सभी गए उनके पास में। महाप्रभु अपने उनको न दे करके उनके पास में हरि कथा के लिए क्यों भेजा? और उन्होंने ये कहा जी आप मेरे गुरु हैं और दूसरों के पास नहीं जाए, ऐसा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु से भी जो श्रवण गुरु अथवा शिक्षा गुरु बहुत श्रेष्ठ हो सकते, बहुत लाखों उदाहरण। इसलिए उसको कहा गया भागवत परंपरा। भागवत परंपरा, हम लोगों को भागवत परंपरा में हरि कथा सुनना होगा। जो गुरु ये कहता है कि नहीं हमारे अतिरिक्त तर्कों में मत जाओ, तो वो गुरु नहीं, बनियागिरी वो करता है, बनिया है, भोगी है, वो सोचता है जी हमारा ये भोग दूसरे के पास में चला जाएगा। सीधी सीधी बात। इसलिए जहां हरि कथा हो रही है, जहां भी हो, वो है ना शतम प्रसंगम बम विरज संविद भवंतरित कर्ण रसायन कथा तज्जोशनातयासु अपवर्गपवर्त्मनि सदादि भक्ति यमुक्रमिष्यति। या ना गुरु के लिए कहा, सतान प्रसंगम साधुओं के संग में ऐसे निष्कपट भजन प्रिय भजन में सिद्ध महात्माओं के संग में जाओ, हरि कथा का श्रवण, इसे क्रमशः तुम्हारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, तुमको साधन भक्ति आएगी, साधन भक्ति इसके आधार क्रमशः भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति आएगी। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मेल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। विशेष करके प्रेममयी जो भक्ति है इसके लिए कहा कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते। कृष्ण भक्ति में सारा वो यदि ऐसी मति कहीं मिलती है, ऐसा कोई संत मिलता है जिसकी मति बुद्धि चित्त वृत्ति कृष्ण भक्ति में रंग गई है, रसमयी हो गई है, ऐसे साधुओं का संग कहीं हो तो सिर दे करके भी ले आओ। कोई गुरु पतित हो सकता है किंतु भागवत पतित नहीं होंगे, बात ठीक है कि गलत है? सबसे बड़ा साधु कौन है? श्रीमद् भागवत, और उसका आचरण करने वाला जो संत है वो भागवत है। जो भागवत का आचरण नहीं करता ये श्रीमद् भागवत का, वो साधु है ही नहीं है। साधु भागवत वेद पुराण उपनिषद एक स्वर से कहते हैं, जहां साधु संत वहीं पर भक्ति विराजमान होती है। उन साधु संतों में से कोई एक बिरला सदगुरु होता है, साधु के सब लक्षण दिए गए। इसलिए हम लोग ये विचार करके अपने जीवन को किसी को अर्पण करेंगे, और यदि ऐसा नहीं होता उसे भक्ति नहीं मिलेगी, लौकिकता मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सांसारिक चीजें मिल जाएंगी, भक्ति नहीं मिलेगी। विशेष करके एक और बात है, कल से हम लोग विशेष रूप में हरि कथा कहेंगे सवेरे शाम, आज मैं आया हूं इसलिए संक्षेप में कह रहा हूं, अभी हमारे ब्रह्मचारी लोग कुछ कहेंगे, कीर्तन भी होगा, और जो कीर्तन करने वाले हैं वो कहां गई सब? दो लड़कियां पूड़ी बना रही हैं, रसोई बना रही हैं। वाह, तो एक बात ये जो महामंत्र है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने विश्व भर में प्रचार किया, यह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। ये कहां से आया? वेदों में है, वेदों माने कलि संतर उपनिषद में है। अच्छा, इनके वक्ता कौन है? स्वयं नारायण है, नारायण या कृष्ण कहो, स्वयं कृष्ण है। वेदों इनके मुख से निकले, इनके नाक के सांस से निकले, इसको लाखों लोगों ने सिद्ध किया, और ये सिद्ध मंत्र है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी आए, वो स्वयं भगवान राधा और कृष्ण मिली, उन्होंने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी, और उनके जितने भी भक्त हैं उसका तो मोहर लगाया। इसलिए इसके उच्चारण से और यह मंत्र यदि गुरु के द्वारा मिल जाए तो उसे जैसे सहज रूप में सिद्धि होगी और दूसरे मंत्रों से नहीं। इसलिए हम लोग हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विशेष करके इस महामंत्र का कीर्तन होता है, इसी का जप होता है, उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं अधिक, और भी कुछ कीर्तन भी बहुत प्रकार के हैं, नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन, जैसे जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोपी प्राण धन मदन मोहन मनोहर कालिया दमन विधान, उसमें और आगे बढ़ जाएंगे। जामुन टसचर गोपी बसन हर रास रसी कत्रिका, ये सब लीला के ये नाम से अभिन्न है, किंतु तो भी होने पर भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, इसकी महिमा कुछ विरले है। क्यों? इसमें जितने भी नाम हैं वो सब संबोधनात्मक हैं। संबोधन किसको कहते हैं? उस लीला में तो कीर्तन कर रहे हैं उनके नामों का, और इसमें हे हरे हे कृष्ण, हे हरे माने हे राधिके, हे कृष्ण हे राधे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे राधे हे राधे, हे राम हे हरे हे राम। राम माने भी क्या? राधा रमण राम, जीव रमण करने सीतारमण नहीं, राधा रमण नाम से ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इसी नाम का अवलंबन किया। वो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे भी कह सकते थे, किंतु इसमें जो रस है, इसमें जो सिद्धि है, वो राधे कृष्ण नाम से नहीं होगी, होगी उससे कुछ हद तक होगी, किंतु जिस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया इस नाम को लिया, इसमें जितना रस है, इसमें ब्रज का जितना रस है सब उसके अंदर में अंतर है। कौन सा रस? सख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सबसे अधिक मधुर रस। मधुर रस में भी ललिता जी नहीं कहेंगे हे राधे हे कृष्ण, कौन करेगा? मंजरिया करेगा, रूप मंजरी करेगा और दूसरी करेगी। इसलिए ये जो नाम है इसमें इतना रस भरा पड़ा है, ये साधारण आदमी समझ नहीं सकता, उनकी बुद्धि वहां नहीं जा सकती। ये कौन देगा मंत्र? ऐसा जो सिद्ध कोई महात्मा हो, जानने वाला हो, तब तो देगा, नहीं तो क्या देगा? अच्छा जाओ दे दिया हरे कृष्ण, दो दिन करके फिर छोड़ दे, सोलह माला करना, इसके बाद में वो देखने नहीं जाएंगे, पूछने नहीं जाएंगे। नाम भी किया, माला उपवास फड़ी फूटी में टंगी है, और गीता का संसार भी हो गया, ये देखने के लिए शिष्य के पास में नहीं जाए, इससे क्या लाभ होगा? इसलिए हमारे शास्त्र भरने चाहिए। अब इसके बदले यदि हम कोई दूसरा कीर्तन करते हैं जो महात्माओं के द्वारा और सिद्ध मंत्र नहीं है, दूसरा यदि कोई कीर्तन करते हैं, जैसे एक आदमी ने कीर्तन किया, वो क्या खेला मारा, हाँ नंद जी का लाला अल बेला, हाँ मटकी में मार गए ढेला, इसमें क्या है? है कुछ? मटकी में मार गया ढेला, मटकी में एक घंटा लगा बस हो गया, और लोगों ने बस जो साधारण है बड़ा रस लिया और साथ ही साथ में बस खत्म। इसलिए ऐसे लोगों के द्वारा जो कीर्तन है पद है उनमें कोई शक्ति संचरित नहीं होती। जो गुरु जो वैष्णव जो साधन नहीं करता है उसके नामों में भी शक्ति नहीं होती। इनको समझ करके हमको शुद्ध रूप में हरि नाम करण करने की चेष्टा। गुरु या साधु पथ का निर्देश कर सकता, चलना होगा हमें महाप्रभु के साथ में। स्वरूप दामोदर जी हैं, रूप गोस्वामी है, महाप्रभु जितना करने के लिए कहते हैं रूप गोस्वामी उससे दस गुण और अधिक कर रहे हैं कि नहीं? जितना करें उसे भी अधिक। उन्होंने यही कहा जो भक्ति ग्रंथ को लिख करके जगत में प्रचार किया, उन्होंने क्या किया? भक्ति रसामित सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि और ऐसे ऐसे अपने हृदय में से निकाल करके भावों को दिया जिसकी कोई जगत में कल्पना नहीं कर सकता। महाप्रभु एक श्लोक कह रहे हैं और उसकी व्याख्या उन्होंने कर दी वहीं पर बैठे बैठे, और महाप्रभु को पता नहीं है महाप्रभु जो व्यक्त कर सकते उसे उससे भी अच्छे रूप में। उनके साथ में काला कृष्णदास था, आनंद दक्षिण में गया काला कृष्णदास, उसने क्या लिया? क्या दिया काला कृष्ण दास ने, वो भट्टाथारियों के दल में जाकर के, और उन्हें मिल गया एक लड़की के प्रति आसक्त हो गया, उन्होंने लड़की को बड़ी सुंदर दिखला करके उसके साथ में कदे ये लड़की तुम्हें दे देंगे, और भोरा भारा लड़का उसमें फंस गया। महाप्रभु भिक्षा लेकर के जब आए तो देखा कि कहां गया, अरे वो तो चंगुल में फंस गया। गए वहां बीच में वो तो मारो 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 सब लोग दौड़ने लगे हजारों लोग, और उसमें से उसके चोटी को पकड़ करके अपने प्रभाव से स्तंभित करके वो तो ले आए। किंतु जब ले आए किसी तरह से पुरी में, तो पुरी में आकर के कहा जैसे ये अपना संभालो बेटा और ये इसको घर भेज। उसको क्या हुआ, चलना किसको है, चलना तो हमें है ना। गुरु कहते हैं चातुर्मास से व्रत करो, यही तो कहेंगे कि अपने आप कर करके दिखला देंगे। यदि कोई चातुर्मास से व्रत नहीं करता है और छिप करके सब काम करता है, दाढ़ी कमा लेता है अथवा कैसी से छांट लेता है, इसको भी छांट लेता है, अथवा एकदम मानता है नहीं है कोई भी रूल रेगुलेशन ने नहीं मानता है, 1,00,000 नाम हरी नाम करने की बात वो भी नहीं पालन करता, गुरु क्या कर लेंगे। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नहीं कर सके तो ये क्या कर लेंगे हम लोग, ये दोष किसका है। स्वामी जी ने लाखों लोगों को हरी नाम दिया, रास्ता बदला है, और उसमें बड़े बड़े सन्यासी यदि गिर जाए तो ये स्वामी जी का दोष है, किसका दोष है। कुछ लोग आजकल कहते हैं स्वामी जी ने शिष्य किया, वो क्या जानते नहीं थे, उनके शिष्य कहते हैं तथा फिर उनको दिया और वो गिर गए तो इसका मतलब है जो गुरु नहीं थे, उनको छोड़ करके जान करके भी किसी प्रकार से यदि 10 मिनट 1 दिन भी हरि नाम हो जाए इसका कल्याण, इन सब विचारों के लिए उनको देते हैं, इसलिए उनका दोष नहीं, दोष जो नहीं चलते हैं उनका दोष है। इसीलिए मान लें कि हम इतना उपदेश देते हैं और आप लोग कोई न लें, केवल तुलसी की माला ले लें, तिलक कभी कभी लगा लें, माला झोली भी दिखलाने के लिए जब सभा में होती है तो आ जाए, और जब घर जाते हैं तो उसको उतार दो, तो इसमें गुरु का क्या दोष है। तो ये सब बातें समझ करके चलनी चाहिए। प्रीति के साथ में नाम हो, बहुत सी ऐसी बातें जो हम लोगों को करने योग्य है, करना चाहिए। यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो वो सुनना सुनना नहीं है। इस तरह से और सी बातें, अभी शिवानंद ब्रह्मचारी जी कुछ बोलेंगे, आप लोग सुनिए। हमको अधिक बोलना विशेष करके रात में हमारे लिए 6 से 7 होता तो बहुत अच्छा होता, अब यहाँ पर 8 से 9-10 ये मेरे लिए एक समस्या है, और लोग यहाँ पर काम करके आएंगे क्योंकि पहले दाम की जरूरत है, और दाम मिलेगा, दाम मैंने क्या, और वो मिलेगा काम से, इसलिए जब काम से फुर्सत होगी तो आएंगे, खाएंगे, स्नान करेंगे, इसके बाद में समय मिलेगा तो आएंगे। और जिनको हरी कथा की प्यास है, भूख है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हें हरी कथा की प्यास है, सब कामों को एक तरफ में छोड़ करके हरी कथा सुनने के लिए वो आए। आजकल लोगों में बहुत कम है, मैं समझता हूं ऐसे समाज में 2-1% है कि नहीं, बहुत कम। तभी हम, मैं संतोष हूं कि इतने आदमी आए हैं सुन रहे हैं, हम तो इतनी आशा भी नहीं करते थे जो इतने आदमी, तो आप लोग हरी कथा सुनिए, 3-4 दिन हम लोग रहेंगे, आप लोग हरी कथा सुनिए और भजन कीजिए, उसे जितना थोड़ा भी हो निष्कपट होकर के करें। मैं यही आज कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। श्रीमान शुभानंद जी थोड़ा सा बोलते हैं।